टीकाकारों ने केवल प्रधान गोपी श्रीमती राधिका और उनकी सखी जो मंजरी इत्यादि है केवल ये दो भावों को अधिकतर वर्णन किया है। पुनः पुलिंदी में भी दो भाव प्रधान सतत इच्छा भाव मई और सतत सतत भाव इच्छा में एक है जो कृष्ण के साथ में मिलन चाहती हैं, उनके लिए बड़ी उत्कंठित हो रहे हैं और उनका सारा इंद्रिय सारे इंद्रिय मन प्राण बुद्धि जो कुछ है सब कृष्ण में तदात्मक है। उनका भाव कुछ अलग है कृष्ण से के लिए व्याकुल हो रहे और दूसरी कौन जो सखियां हैं मंजरित है वो किसके लिए व्याकुल हो रही है। हम कैसे कृष्ण से अपनी प्रियतमा गोपी को मिला सकते और उनको मिलन देकर के इनके अंदर में एक उल्लास होता है, इसलिए इन लोगों का रति को कहते हैं उल्लासमयी रति। भक्त स्वामी सिंधु और
उज्जवल लिंग
और हमारे जीव गोस्वामी के प्रति संदर्भ में इसका वर्णन किया गया, इसलिए यहां पर दोनों भाव आएंगे। श्रीमती राधिका जी या कह रही हैं या वैसे दूसरी कौन दूसरी चंद्रावली जी हैं, भद्रा जी हैं, श्यामला जी हैं, ऐसे ऐसे जो एक एक नायिका है, ललिता और विशाखा भी हो सकती हैं, किंतु ये सब समय राधा जी के सुख में और दुख में उनकी सेवा चाहते हैं, इसलिए ये भी लोग भी राधा कृष्ण से मिलन करते हैं, इसलिए इनकी एक उक्ति और दूसरी गई रूप मंजरी प्रति मंजरी इत्यादि की इच्छाएं। ये दोनों का या ब्रज में जितने भी हैं अपने अपने प्रेम के तारतम्य से सभी लोगों की दश इंद्रियां क्या जो कुछ मन प्राण जो कुछ सब कृष्ण में लगा हुआ है। जो साधक लोग हैं वैसा ही चित्त लगाने की चेष्टा करें, वैदिक भक्ति वाले ऐसा न करेंगे वो ऐसा होगा ही क्या, इसमें जिसको लोभ उत्पन्न हुआ वही केवल ऐसा कर सकते दूसरा नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग अबाउट बेनवे दैट देर आर टू मोड्स, वन ऑफ श्रीमती राधिका चंद्रावली पत्रा श्यामला एंड अदर्श दे आर ऑलवेज फीलिंग सेपरेशन एंड दे आर ऑलवेज हैव सो मच मोर टू मीट कृष्ण एंड अदर्स आर not for this, like Rup Manjari, Rati Manjari. They are also so much utkanthit means eager. But their eagerness and Srimati Radhika's eagerness is of separate kind. Radhika wants and all others want to meet Krishna. They are so much eager. But they are eager, Rup Manjari, Rati Manjari are eager only to serve Radha and Krishna Kanjiva. So that they can meet anyhow by any process Srimati Radhika to Krishna and to serve him. So all our acharyas have explained the meaning of these slokas in two ways. So they should try, those who have some grief, they should try to do. अदरवाइज देश टू ट्राई टू बाई वैदिक भक्ति के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर अनर्थों को दूर कर धीरे 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 भक्ति के द्वारा अनर्थ शुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति अनर्थ को दूर कर अपनी चेष्टा से और भक्ति को अपने हृदय में लाए राय ये कभी संभव नहीं। जो जिस स्थान पर है जैसे स्थान पर है जिस रूप में है जिस अवस्था में वही से भक्ति आरंभ कर स्थान स्थित अनुमान धीरे धीरे जितनी भक्ति हृदय में आएगी उसका लक्ष्य अपने आप
अन्नता ये नहीं होगा। जितने भी भागवत के श्लोक हैं उनमें सभी का जी का जीतना हमारे गोस्वामी लोग का ही
परम दृष्टा नहीं होता।
इसलिए चित्त को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए जितना ही हम अधिक प्रेम से, प्रीति से, श्रद्धापूर्वक हरिनाम करेंगे, हरि कथा का श्रवण करेंगे, मन में हरि कथाओं का स्मरण करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, अपने पानी इंद्रियों के द्वारा प्रणाम इत्यादि करेंगे, कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सप्तम आत्म विवेक, इसमें कुछ बाहरी है कुछ आंतरिक है, तो दोनों को अपने इंद्रियों को उसमें ऐसा लगाया जाए भक्ति में, जो हमको समय नहीं मिले जो अनर्थों की चिंता, बस यही एक उपाय। नहीं तो वायु को भी कंट्रोल किया जा सकता है, मन को नहीं। वी कैन कंट्रोल मूविंग एयर बट वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल माइंड, वनली बाय दिस वे ऑल द चैंटिंग रिमेंबरिंग हियरिंग द पास्ट टेंस ऑफ कृष्ण वी कैन कंट्रोल एंड अदरवाइज देयर इज नो अनंत। यू शुड नॉट थिंक दैट व्हेन अवर अनंत विल गो देन भक्ति विल कम, फर्स्ट भक्ति विल कम बाई श्रवण कीर्तन स्मरण एंड देन वी विल क्वालिफाई द कंट्रोल अवर अनर्स एंड देरी गो। वी हैव नो टाइम फॉर थिंकिंग ऑफ अनर्स, नेवर लेन अदरवाइज दे विल ऑल कम। सो वी विल शुड ऑल्सो ट्राई, हम लोगों को यही करना चाहिए, कैसे दिन भर हम कीर्तन करें, श्रवण करें, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। कैसे करेंगे? जिनका ऐसा हो गया है उन्हीं का चिंतन करेंगे, कृष्ण की अपेक्षा उन भक्तों की हम अधिक चिंता करें। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, कृष्ण आराधनम परम, किंतु फिर भी तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्थ, तदीया नाम समर्चन उनके जो भक्त हैं कौन, उनका पहले अर्चन होगा प्रहलाद नारद भीष्म बलि इत्यादि जो द्वादश हैं, ये लोग भक्त हैं और भी भक्त हैं, किंतु इनसे भी अधिक जो भक्त हैं वो कौन है, नारद इत्यादि, उनसे भी अधिक जो भक्त हैं जो ब्रज के भक्त हैं, उन भक्तों में भी बस धीरे 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 श्रेष्ठ तक चले गए, ऐसे प्रेमी भक्तों का प्रेम पर प्रेमातु और प्रेमातु से भी जिनके आत्मा में सब समय कृष्ण के प्रति प्रेम है, रागात्मिक जनों का चिंतन यदि करें तो यहां पर तस्मात् परतरम परतरम देवी तदीयानम तदीयानम हुई तदीयानम हुई तदीयानम प्रहलादी अवसो तदीय हनुमान जी अवसो तदीय सिद्धांत मधुमंगल और अवसो तदीय मैया जी अवसो तदीय गोपी जार अवसो तदीय रूपमंजरी जी अवसो तदीय, इन ऑल कौन तदीय, हम किसकी समर्चन करेंगे, रूप रति ये जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये जितने हैं इन लोगों का समर्चन, तो हमारी भक्ति वैसे बढ़ेगी। जो जितना है उन्हीं का चिंतन करेगा, कैसे साधन भजन करके कैसे दिन रात करते हैं, रूप सनातन का भजन करते समय में ये देखें कि राधा कुंड कटे कलिंग दत्तने आती बीच बंसी बटे प्रेम उन मार प्रसाद अशेष दशया ग्रस्त प्रमत्त सदा तौ च कदा हरे गुण वर्ण भावाभिभूत वंदे हे राधे ब्रजदेवी के चलते हे नंद सुनो उत होशंता सर्वतौ खेदे महाबिपल वंदे भूषण। इन लोगों के समय अंतर में कैसे भजन करते हैं और बाहर रूप में कैसे भजन करता करते हैं, वो क्या श्लोक,
सेवा साधन रूपेण
सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिख सुना
कार्य
ब्रजलोकानुसार ब्रजलोकानुसार ब्रजलोक के कौन अनुसार ये रूप सनातनी आंतरिक भाव से उनका और ऊपर में जैसा साधन करते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नदी काला सामने को स्वरूप लाइट इस प्रकार से सात समय उन्हीं के भावों का चिंतन करेंगे इसलिए इसका वर्णन किया गया अब हम लोग चलते हैं सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ये इसका ऊपर से भी नीचे से भी भीतर से दोनों जैसे कृष्ण का सखाओं का यहां पर पढ़ He is now explaining how the sakhas of Krishna are serving internally and outwardly. If there is no internal mood, they can serve outwardly. But it is about this for us. किंतु हम लोगों के लिए विपरीत है हम पहले अपने बाहरी इंद्रियों को लगाएंगे भगवान के साधन में और तब लगेगा आंतरिक भाव क्योंकि साधन कर रहे हैं और उनका क्या है उनका अंतर में प्रेम है उसके अनुसार में वो साधन करते हैं और भजन करते हैं जो कुछ करते हैं उसके अनुसार में उनकी क्रियाएं होती हैं ये दोनों में अंतर है हम जो कुछ करते हैं अभी इंद्रियां हमारी प्रधान है हाथ पैर नाक कान आंख मुख ये सब ज्ञान इंद्रिय स्थूल इनको भगवान की सेवा में लगाई इसलिए इसको साधन भक्ति कहा गया कृति साध्य भवे साध्य भाव स्वसाधन नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रातःकाल हरिद्व साधन अंतर में जो भाव है उसको बाहर में प्रकाश करने के लिए हम अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति का अनुशीलन करेंगे हाथ के द्वारा झाड़ू इत्यादि देना आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन भक्तों की सेवा इस तरह से अपने ज्ञानेंद्रिय और इसको लगाएंगे फूल जीव को और फिर लगते 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 भीतर से जो होगा वो भाव क्या हृदय साध्यता प्राकट्यम हृदय में अब उन भावों को प्रकट करने के लिए पहले ये करो इसका नाम है साधन जो भाव में होगा तो आधा इंद्रिय का रहेगा प्रकट में और आधा हो जाएगा भाव और जब प्रेम हो जाएगा तब तो ये स्थूल वाला सब हट जाएगा केवल आत्मा की क्रिया भाव की क्रिया है वहां पर स्थूल क्रिया इस तरह की नहीं होगी उनका उस समय स्थूल भीतर और बाहर दोनों एक हो जाएगा एट दैट टाइम देयर इंटीरियर मोड्स एंड आउटर मोड्स विल बी द सेम तो यदि दूरम गता कृष्ण श्रीमद्भागवत का श्लोक है श्रीमद्भागवत में कृष्ण गोचारण करने के लिए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं लाखों लाखों सखा कृष्ण को चारों तरफ से घेर रखे हैं दो प्रकार का वर्णन एक ब्रह्मा जी का वर्णन एक गोपियों का वर्णन ब्रह्मा जी का वर्णन क्या है नौमिध्यते अब्रवपुषे तरितंबराय गुंजावतन परिपच्छलसन मुखाय पन्नस्रजे कवलबेन विषाणुबेन लक्ष्मणे नृपदे पद्मं गजा और वरहापीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारे विप्रतभाष कनक कपिशं वैजयंती चमालं रंध्राणवेन रथरसुधया पूरे अंकुबिंदु कृष्ण गायों को लेकर के असंख्य गायों को लेकर के एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर वन कैसे है कुस्मित मदराज सुश्रृंग वृंदावन कैसा हो रहा पावन भौरों से गुंजायमान हो रहा भौरे पावन हो गए किस लिए कैसे पावन हो गए मधुपान पर जो पुष्प खिले हुए मतलब पाल करके पागल होकर के कभी इधर कभी गिर पड़ते हैं कभी इधर गिर पड़ते हैं कभी उधर लूट जाते हैं और इस तरह से तुलसी का सुगंध है फूल पुष्पों के सुगंध नदियों का पानी स्वच्छ जमुना का मानसी गंगा का पानी एकदम स्वच्छ मीठा सुंदर सरस, उसमें कमल के फूल खिले। जिधर देखो प्रकृति सुसज्जित है और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। उस समय में कृष्ण यदि दूरम गदा, यदि कृष्ण चले गए किसी पेड़ के नीचे आड़ में हो गए, इफ कृष्ण इज गोइंग एट दैट टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू काउ हर्ड्स फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर लाइक भ्रमर बी, उनके सखा उनके लिए पागल हो गया और कोई नहीं, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। वन शोभे इखन आए, वन शोभा इखन आया था। कृष्ण वन शोभा को देखने के लिए एक फूल से दूसरे फूल में यहां से चले गए। कोई लता अत्यंत पुष्पित है, माधवी लता या कोई दूसरी लता, हेम लता और कितने प्रकार की लता है, वो एकदम फूलों से मंजरियों से फैली। कृष्ण उनकी शोभा देखने के लिए यदि गए तो क्या हुआ, देखा कि कृष्ण उतर गए हैं। अभी सखा लोग ढूंढने ढूंढने लग गए, ये किधर गए किधर गए। अहम कुर्बम अहम कुर्बम इति संप्रिष्टते में रेमी, वो चिल्लाते थे, वे कृष्ण कहां है, हमारे प्यारे सखा किधर हैं, मैं इनको जल्दी से पकड़ूंगा। वो दौड़े वो दौड़ा वो तस्दान सुबल मधुमंगल इत्यादि सभी एक मिनट उनके लिए धैर्य की बांधना भी बड़ा भारी कठिन, या वैसा अगाध प्रेम नहीं होने से नहीं। इनका प्रेम कहां तक गया, अनुराग से, अनुराग में कहां तक, स्नेह मान प्रणय
अनुराग
अनुराग। श्रीमती यशोदा जी का भी प्रेम और गोपिया का प्रेम बहुत ऊपर चला गया, तो इनको भी राग, राग माने क्या, राग माने क्या, स्नेहशील बहुत। राग की परिभाषा में देता है, उसका चित्त एकदम राग से रंग गया कृष्ण प्रेम से, नए नए भाव आते। तो ये से महाभागा है, किसी किसी स्थल पर ये अनुराग से भी बढ़ जाते हैं सखा लोग, सुबल इत्यादि, सुबल अर्जुन उज्ज्वल मधुमंगल ये अनुराग से भी बढ़ जाते हैं, महाभाव को स्पर्श कर देते हैं, ऐसे ये सखा। वी शुड नॉट थिंक दैट द सखा आर लेस देन मदर वात्सल्य प्रेम, समटाइम्स दे गो फॉरवर्ड देन। उस समय में कितनी उनकी स्प्रिया संप्रिष्य उनको छूने के लिए दौड़ते हैं, वो पागल हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, यहां कह रहे हैं पूर्वोक्त पुलिंदी कन्याओं की हमने चर्चा की, पुलिंदी कन्याओं का कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है, कृष्ण के उस कुमकुम को देख करके, वो घास या पत्थर के ऊपर में जो कुमकुम लगा है उसको देख करके इनको काम ताप होता है और उसको वो पूछ करके अपने हृदय में अपने अंगों में लगाती है और अपने काम ताप को वैसे ही दूर करते हैं, ये मानो कृष्ण आज मिल गए। गोपियां कहते हैं हम मर करके यदि गोपी से पुलिंदी कन्या हो तब हमको ये जन्म सार्थक हमारा होगा, कितना ऊंचा प्रेम गोपी का। तो देखो सचमुच में ये भाव किनके हैं, ये गोपियों के भाव, गोपियां कितनी उन्नत हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम की शिखर पर आरूढ़ होकर के भी पुलिंदी कन्या होना चाहिए। जहां जहां तनिक भी प्रेम का कोई कृष्ण प्रेम का संबंध होता है वहां पर वो बिक जाती हैं और वही होना चाहिए ये गोपियों। किंतु तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिंदी कन्याओं का कोई सौभाग्य नहीं, ऐसा मत समझना, उनका ऐसा भाव नहीं रहने से गोपियां जो कुछ कहती हैं वो परम सत्य है, उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये गोपियाता रहे हैं, इसलिए इनकी बात कभी भी झूठी नहीं, इसलिए वो जरूर कृष्ण के उस कुमकुम राग को ग्रहण करती है। कितनी सौभाग्यवान है, किंतु देखो उन कुलिंदियों को कृष्ण का अंग स्पर्श नहीं कर सकती है। गोपियां तो कहती हम नहीं कर सकते, करती हैं वो सखा लोग, तो उनके हाथों को कुश्ती में ये करेंगे, उनका प्रत्येक अंग से कृष्ण का अंग मिला हुआ, और तभी इतनी उनको प्यास है जो कहते हैं कि हमको कभी कृष्ण देखे ही नहीं हमने कृष्ण को, ये उनके प्रेम की बात है। किंतु अब हम तुलना करते हैं, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं जो पुलिंदी रमणियां हैं और ये सखा लोग हैं, दोनों में सौभाग्यवान कौन है? तुलना मतलब दृष्टि से वो करी है कि हम पुलिंदी नहीं, हम सखा बनना चाहते हैं, सखाओं के साथ में दिन भर खेलते हैं, भोजन के समय में एक साथ में भोजन करते हैं, उनका मीठा लेते हैं, उनको खिलाते हैं, खेलते हैं। सखा के समय यशोदा मैया दोनों को लाड प्यार करते, पुलिंदी को करेगी यशोदा मैया, कृष्ण के घर में भी नहीं आ सकती, और सखा लोग कृष्ण सो रहे हैं उनके साथ में पलंग पर सो जाएंगे, अरे तेरी की धत तेरी की कहेंगे, अरे काना क्या कर रहा है, और उसको जबरदस्ती उठा ले। यशोदा मैया तो लाल पार से चुंबन करते ही उठाएंगी, पर कृष्ण इज स्लीपिंग, यशोदा मैया विल कम एंड स्वीटली वेरी जेंटली ही विल टेक वाटर एंड गिव फ्रॉम द माउथ ऑफ कृष्ण, बट व्हेन ए सखा मधुमंगल विल कम ही विल अब्यूज कृष्ण, अरे शारे यू आर स्लीपिंग, क्या इतनी देर तक
स्टिल यू आर स्लीपिंग,
स्टिल यू आर स्लीपिंग, गेटअप एंड दे विल टेक हैंड्स ऑफ कृष्ण, उनको उठा करके उनको उठा देंगे, अरे तरे सारे तत्काली देंगे, कोई बात सारे सो रहा है। ये पुलिंदियों में और उनमें कितना अंतर है, उसी समय में गले में लिपट जाएंगे, मैया है वहां, बाबा भी हैं, कोई परवाह नहीं सखाओं, फादर एंड मादर आर प्रेजेंट देयर, सुबल सीता मधुमंगल भी कम एंड एम्प्रेस कृष्ण इन दैट फॉर्म, बट दिस पुलिंदी उनका सौभाग्य नहीं है जो उनके आए और कृष्ण का अंग भी स्पर्श करें, कभी कृष्ण से बातचीत करने के लिए भी उनको, इसलिए कहते हैं हम मर करके भी सखा बने और सखा बन करके कृष्ण के साथ सदैव रहेंगे, दिन में रहेंगे, रात में रहेंगे, उनके साथ में हम रहेंगे, उन सखा बनकर। सखाओं का कितना सौभाग्य, गोचारण करने के लिए जाते हैं सब समय उनके साथ में,
परंतु पुलिंदियां तो मधुर रसास्पदा है, मधुर रस से आस्तिक है ना,
ये भी नहीं है कौन जानता है कितना मधुर था,
फिर भी उनके अंदर
किसी भी साधारण कुब्जा को यदि प्रेम हो सकता है ऊपर से जैसा, तो कुब्जा से ये बढ़ करके होंगी या कम होगी, कौन सा होगा? ये गोपियां तो एक तृण को पाती हैं, कृष्ण के साथ में एक तृण लग गया, अरे बांस की सूखी छिद्र वाली बंसी, उनको कितना सौभाग्यवान मानती है, कहते हैं इनके अदर का सब कुछ पार कर हमारे लिए छोड़ा है, और उनके साथ में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, गाली गलौज करती हैं, तो बंसी में मधुर रस है न शक्कर रस है न क्या है, गोपिया क्या समझती है, उसे कभी बंसी बनाती है, मुरली बनाती है, कभी बेणू बनाती है, उसके साथ में कैसे कर उसे कर, और वो चाहते हैं कि मर करके हम बंसी बांस बन जाएं जो कृष्ण के अधरों को सक्षम किया, इसलिए उनसे भी विशिष्टता, सनातन गोस्वामी का विचार है कि उनसे भी ये श्रेष्ठ है, कौन भगवत सच कैसे हैं आगे बतलाएंगे, इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या दर्शन गतानं परदैवते मया सितानं मरुदारकेन सार्थं विजयो कृतपुण्य पुञ्जा, कितनी सौभाग्यवान, उसी को सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, छह श्लोकों में उनके सखाओं का वर्णन करेंगे सनातन गोस्वामी। हाँ, गोपियां भी कहती हैं कि हम मर करके अब हम गोपी हो करके नहीं आए, कितना बड़ा कष्ट गोपी जीवन में। वी वांट टू डाई एंड नेवर कम एज ए गोपी, गोपीज आर थिंकिंग लाइक दिस बिकॉज सो मच सफरिंग, सो मच सेपरेशन, सो मच फॉर अवे फ्रॉम कृष्ण इन गोपी, गोपी में गोपी बड़ी। कितना कष्ट है गोपियों को, किसी के सामने नहीं मिल सकती, और कृष्ण से मिलना बड़ा ही कठिन, सदैव तक सोते रहेंगे मैया उनके साथ में, दोपहर में वो चार के लिए जाए, खाऊ खाएंगे खेलेंगे सखाओं के साथ, लौट करके आएंगे सखा लोग, घर में आएंगे मैया बाप, और हमारे शत्रु नरद सास देवर घर के बाहर के सभी लोग शत्रु, बिना कृष्ण से मिलेगी कितना उनकी बात करते हैं, पति महाक्रोधी अभिमन्यु, मन्यु माने क्रोध, अभी सब समय चारों ओर से क्रोधी, बिना बात का बात कुत्ते जैसे भी, कुत्ते से भी बढ़कर क्रोधी, ननद भी वैसे चित्रा का निवेशन करने लगे, और मैया कैसी सास कैसी
जटला पका दे,
जटला पकाना बिना बात पर हो गया एक घंटा, एक घंटा हो गया, कितना हो गया, पांच मिनट, एक मिनट, गोपियां हमको समय नहीं मिलता है जो किसी से कभी मिले, किसने का दर्शन भी करने हमारे लिए दुखर है, और उस सखाओं का सौभाग्य देखो जो सवेरे से शाम तक रात तक इन सखाओं के साथ में चलते हैं, और सखा लोग क्या करते हैं, कभी लड़ने के बहाने में इनको पकड़ते हैं, अपने अंगों से अंगों को पकड़ते हैं, कभी डरते हैं, कभी एक साथ में खाते हैं, कितना मित्रता इनमें है, और हम लोगों का दुर्भाग्य कहीं नहीं मिल सकती। वृंदावन वत्स पालन के समय में सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं, यदि दूरानुगता, कितना इनके प्रति स्नेह है, स्नेह से भी बढ़कर के राग है, राग से बढ़कर के अनुराग है, अनुराग मैंने नित्य नवीन नवीन रूप में नौनव रूप में जो राग बढ़ता है, बढ़ने का कोई जगह नहीं, किंतु नित्य नवीन रूप में सदा आवर्धित होता है, उनका प्रेम ही ऐसा है, जिनका प्रेम ऐसा है उस प्रेम को कहेंगे अनुराग, उस अनुराग का ये वर्णन कर रहे हैं। अघासुर के मोचन के पश्चात अघासुर का वध किया गया, उसके पेट में अघासुर भी कितना सौभाग्यवान, जब कृष्ण जोगी लोग कहते हैं ये हमारे हृदय में आओ, ध्यान करते हैं, हम नहीं जाते, और इसके बिना किसी कारण से अपने सखाओं के साथ में, गैयों के साथ में, और अपने आप बंसी लिए हुए ब्रजवेश में उसके पेट के अंदर में चले गए, मुख के अंदर से, कृष्ण वेंट इन द माउथ ऑफ दैट सर्पेंट अघासुर एंड इन हिज स्टमक विथ हिज काउज विथ हिज ऑल फ्रेंड विथ बंसी एवरीथिंग, सो दे आर मोर सौभाग्यवान फॉर्चुनेट देन जोगी जैन ऋषि जैन महर्षि। आफ्टर दैट लीला सखा सखा लोग गए कहां, काम्य बन के भोजन थाली, और वहां बिहार कौतिक करने लगे, खाने पीने लग गए, कृष्ण को बीच में रख, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई, वहां मंडली हजार मंडली बनी, जो पीछे वो भी कृष्ण को देख रहा है सामने, कोई इधर में देख रहा है कोई इधर, किंतु देख रहा है कि हम कृष्ण के साथ में भोजन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसमें प्रातःकालीन संख्या थी, गो बत्सों को लिया था कृष्ण साथ में, उसमें गाय नहीं बछड़े, अपने घर से निकलकर बंसी और सिंगा बजाते हैं, लाखों लाखों गो पालकों के सहित परमानंद में सखाओं के साथ में एक पल से दूसरे पल में प्रवेश करेंगे। उस समय गोपाल बालक असंख्य संख्या में अपने अपने गो बच्चों के साथ, एक एक सखा के पास में कितने गो बछड़े हैं कोई गिनती नहीं, देवर असंख्य सखा और एक एक सखा के पास में असंख्य बछड़े सहस्त्र अजूत लख कोटि कोटि बछड़ों को एक एक सखा लेकर लेकर गोचारण करने के लिए क्रीड़ा करते 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 भगवान कृष्ण के साथ में दूर वन में प्रवेश किए। वहां नाना प्रकार के फल फूल प्रवाल मयूर पुच्छ के द्वारा भूषण कृष्ण को सजाया श्रृंगार किया और अपने आप श्रृंगार सखाओ डिड श्रृंगार ऑफ कृष्ण एंड कृष्ण डिड श्रृंगार ऑफ सांख सुबल सिदामेन ऑल कृष्ण बिकेम देयर लेस एंड लेस होकर के लाखों लाखों बनकर के उनको श्रृंगार इत्यादि किया। उनके द्वारा कृष्ण विभूषित होने पर उन्होंने किसी का बेणु किसी का श्रृंग किसी का भोजन छिपा दिया किसी दूसरे सखा विशेष करके मधुमंडल का, और मधुमंडल गाली देते हुए चारों तरफ में ढूंढने लगे जो हमारे हमारा बेणु हमारा श्रृंगार किधर गया हमारा भोजन हमारा लड्डू कहाँ गया। और यदि पकड़ में आ गया देख लिया जैसे यहाँ पर तो लेने गया तो उसने दूध फेंक दिया उसको उसने फेंक दिया उसको और मधुमंगल चारों तरफ में गाली बकता हुआ घूमता या किसी दूसरे का भी इस तरह से खेल कर रहे हैं और हंसते हंसते फिर वो लौटा देते हैं। इस प्रकार से कभी कोई खेल करते हुए कृष्ण यदि दूध चले जाते हैं एक मिनट के लिए वो रह नहीं सकते दौड़ करके मैं कृष्ण को छूंगा मैं छूंगा इस प्रकार से कहते हुए और कृष्ण को पकड़ करके आगे इनका प्रेम देख करके गोपियां कहते हैं और हम तो चाहते हैं कि ये गोपी जीवन ठीक नहीं हम तो चाहते हैं कि सखा होकर के ही हमारा जन्म हो और कृष्ण के साथ में ऐसे ही नित्य खेलते रहे और उनकी सेवा आज ही तक रहे कल साल सनातन गोस्वामी हैज कॉटेड दिस श्लोक इन बृहद भागवतम इन हिज दर्शन एंड ही इज एक्सप्लेनिंग दिस श्लोक इन वेरियस मोड्स। सनातन गोस्वामी जी श्रीमद भागवत के इस श्लोक को लेकर तरह तरह से इसकी व्याख्या कर और उसका रसप्रसादन कर रहे हैं और रसिक भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। कृष्णदास आशी ये श्लोक श्रीमद् भागवत के देवी गीत का है। दिस श्लोक इज वन ऑफ द श्लोक ऑफ देवी गीत and the श्लोक after अपनाता फल विदम न परम विदान एंड चुत प्रवाल बरहस्त और कोट पलाप माला कृत
परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेजतु अलम पशुपाल गोष्ठ रंगे जथा मत परो पशु।
तो इस श्लोक में
इसे श्लोक के द्वारा सनातन गोस्वामी कहा गोपियां जब कृष्ण को चारण करने के लिए जाते हैं उस समय कृष्ण अनुरागी गोपियां अपने पूर्वराग जनित उनको पूर्वराग होने के कारण उत्कंठा से मिलन की उत्कंठा से अत्यंत अधीर हो जाते हैं और वेणुगीत को सुनकर उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। उस समय में अपने कृष्ण अनुराग को ये छिपाना चाहती हैं किंतु बरवश उनके मुख से ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं जिससे कि वो अपने भावों को छिपा नहीं पाती अपने कृष्ण अनुराग को। वह कृष्ण इज गोइंग टू कव हर द गोपीज असेंबल्ड हु वेर ऑफ द सेम मूड दैट इज समझा एंड बिगन टू डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ वेणु। But when they began, at once Krishna came in their hearts and they were at once attracted to Krishna and began to say about Krishna. That is why they wanted to cover their moods and that is why they were describing the sweetness of Krishna. किंतु यह बात छिपी नहीं रही गुप्त नहीं रह सकी। वे अपने इस अवहित्था भाव को गुप्त नहीं कर सके। फिर उनको कृष्ण का रूप स्मरण आते ही उन्होंने देखा भाव नेत्र से कि कृष्ण गोचारण जात करते समय एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते समय हजारों सखाओं और गायों के साथ में घिरे हुए जा रहे हैं और वेणु वादन कर रहे हैं। महाभाव का एक लक्षण यह है कि अप्राणी में भी कृष्ण दर्शन कृष्ण स्पर्शन का सौभाग्य वह व्यक्ति देखता है। अप्राणी में भी तृण में भी यह देखता है कि कृष्ण जा रहे हैं और एक तृण जो ओस बूंदों से पानी से भिजा हुआ है कृष्ण के चरणों में संलग्न हो गया छोटा सा तीर और कृष्ण के चलने पर भी वो उससे नहीं निकलता हटता नहीं है। तो गोपियां देखती हैं कि ओह तीर्ण का इतना सौभाग्य जिनके चरणों को छोड़ नहीं रहा और उस तीर्ण के प्रति उनको ईर्ष्या होगी और उसकी महत्ता वो समझेंगे और कहेंगे जाओ हम तो ऐसी दुर्भागा हैं कि हम जो चाहते भी नहीं कर सकते और ये छोटा सा तीर्ण कृष्ण के चरण में लगा हुआ है। यदि ये देख लिया है जैसे उसमें थोड़ा सा पैरों में कुमकुम है और उसमें वो लग गया तो आज देखो तो यदि मर करके हम तीर्ण हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ये महाभाव का लक्षण है। अब प्राणियों में भी एक पत्थर के टुकड़े में भी किसी भी निर्जीव प्राणी में कृष्ण के चरणों का स्पर्श अंगों का स्पर्श देख करके वो मानता है कि इनका जन्म सार्थक है, इनकी आंखें सार्थक है, उनका सब कुछ सार्थक। और यदि जगत में कोई दुर्भागा है तो हम है, मर करके तीर्ण क्यों नहीं हम होते, विधाता ऐसा क्यों नहीं करता। Here, gopis are full of महाभाव, all the gopis. महाभाव is the highest mode of प्रेम। What is the symptom of महाभाव? If they will see anything which has no life yet, like any piece of grass, anything, and if they will see that, oh, it is attached to Krishna feet, then they will have so much irsya with that trina. Yeah, I will speak in Hindi and Ramchandra will explain in English. So my time will be not lost and I'm not exactly explaining English. So he will help me. I should speak Hindi, Mali. So what I told?
अभी ये बताया कि वो ईर्ष्या का महाभाव की स्थिति ये होती है कि
In English is.
Maharaj is saying that in the state of Mahabhava.
पहले श्लोक में उन्होंने बताया है और यदि कोई जगत में धन्य है, किसी का जीवन सार्थक है, पशुपाल गोष्ठ्यान सखाओं का जीवन ही संसार में सबसे अधिक धन्य है। ये सखा लोग कृष्ण के साथ में सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। कृष्ण सो रहे हैं तभी आएंगे मधुमंगल सुबल अर्जुन लवंग और उनको अरे अभी सो रहा है कन्हैया और सोते हुए उसको पकड़ उठा देंगे, सोने रहने पर भी उसको आलिंगन कर लेंगे, एक साथ में खाएंगे पिएंगे चलेंगे, दिन भर उनके साथ में गैया चराएंगे, कृष्ण जो कहेंगे वही करेंगे, फिर लौ करके आएंगे, फिर कृष्ण के साथ में भोजन करते हैं, स्नान करते हैं साथ ही में। इसलिए जगत में कोई धन्य है तो गोपालक ही धन्य है। इसलिए हम लोग यदि जन्म लें तो अब स्त्री रूप में, गोपी के रूप में नहीं, अब तो हम लोग गोपालक के रूप में आए, जैसे कृष्ण की हम लोग सेवा कर सके, उनका सब समय संग का सुख हम लोग प्राप्त कर सके। इसलिए गोप जन्म ही हमारा सबसे ठीक है, गोपियां समझ रहे, किंतु प्रेम के चरम उत्कर्ष पर महाभाव की विस्तारता में ये गोपियां हैं, इन सखाओं से भी बहुत उन्नत है, फिर भी ऐसा है, ये प्रेम का ही ऐसा भाव है। जिस समय ये गोपों का सौभाग्य वर्णन कर रही है तो एक सखी कह रही है, गोप्यो किम आचार दयम कुशल अश्म वेणु, अरे सखी, अरे देखो तो इन गोप बालकों की तो सौभाग्य की बात छोड़ दो, उन लोगों ने कृष्ण के साथ में जन्म लिया है, एक साथ में बचपन से नंगी स्थिति से ही एक साथ में खेलते कूदते आए हैं, एक साथ में लाड प्यार जसोदा जी का भी पाया है, इसलिए सुखाओं की तो बात छोड़ दो। अरे देखो तो ये निरस बांस की नाना प्रकार के छिद्र से युक्त निरस निष्ठुर और कठोर ये बांस, उसका बांस टाइप टुकड़ा, इसका भी दुर्भाग्य है कि ये कृष्ण को अथर पर सब समय विजयाजित रहती है। कृष्ण इसे कभी अपने यहां पर पगड़ी में रखते हैं, कभी अपने जठर पतय अपने कमर के फेटे में उसे रोक रखते हैं, कभी अपने बस्तक्षल में लेकर के सोते हैं और कभी अपने इन अधरों पर रखते हैं, अपने अधरामे से उसका सिंचन करते हैं। देखो तो इसका सौभाग्य। ओ अरि सखिरी गोप्य किमाचर अयं कुशल स्मरे। इस वेणु ने पूर्व जन्म में किम कुशल, इसने कौन सा पुण्य किया था, कौन सी बड़ी तपस्या की थी, कौन से तीर्थ में इसने स्नान किया था, न जाने क्या दान किया था, न जाने किसकी आराधना की थी जे इसको इतना सौभाग्य हुआ है जे ये नीच कुल में जन्म लेने पर भी। यदि हम जानती तो ऐसी भी तपस्या करें। चलो जोग माया पूर्णिमा जिसे पूछे वो भूत भविष्य भविष्यत और वर्तमान जानने वाली है, और उनके जान लेने के बाद हम भी वैसे ही कठोर तपस्या करेंगे जिससे अगले जन्म में बांस बन करके आकर के बांसुरी बन करके उनके होठों पर हम विराज। रखी थी वहां बिछी में टोक दिया, क्या कर रही है वो दूसरी सखी, उसके पहली सखी की बात सुनकर की माचर माने क्या, क्या किया, खाद पत्थर, कुछ नहीं किया। ये तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसी ऐसे कुकर्म किए होंगे जिसे कठोर बांस का जन्म मिला स्थावर और उसके बाद में काटी गई और आग में लोहे को गर्म करके दागी गई, छेद दिए गए इसमें। इसके जन्म से ही पता चलता है कि इसने क्या किया, कोई बुरा ही कर्म किया होगा, नहीं तो ऐसे यदि कोई अच्छा कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म होना चाहिए, तो इसने क्या क्या किया, इसलिए किम आचर तुच्छ रूप में यह कह रही है मानो एक दूसरी शक्ति क्या किया होगा, बांस जन्म लिया और लोग गर्म लोहे से ये दागी गई, उसे काटी गई, इसे क्या जन्म होगा, इसने कोई भी अच्छा नहीं किया। देखो जो पुरुष होकर के भी स्त्री का काम कर रही है, यही तो ये कर रही है, काम जैसी कर रही है। पहली वाली जो सखी थे ऐसा मत कहो, ये कहना ठीक नहीं है, देखो तो कितना इसका सौभाग्य है, तुम्हें ऐसा सौभाग्य है। दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, देखो कितना इसका सौभाग्य है कि जो पहले मैंने कहा भले ही किसी नीच जन्म जाति में जन्म लिया उससे क्या होता है, अरे देखो जिसका कैसा सौभाग्य है ये कृष्ण के अधराम भाई, जो गोपिका ना जो गोपियां इसके उत्तराधिकारी हैं हम हैं। दामोदर अर्थात देखो बंसी के साथ में कृष्ण का कब से संबंध हुआ, हमारा संबंध हुआ कब से, जब से जन्म हुआ, और इस गोपी का इस वेणु का कृष्ण के साथ में जब मिलन हुआ ये दामोदर लीला के बाद में, उसके पहले कहीं भी बंसी का या वेणु का कोई भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता। जिस समय कन्हैया को मैया ने बांधा उसमें वेणु का उल्लेख वहां पर नहीं है, जो वेणु के साथ में उनको बांधा, दामोदर लीला, इसलिए दामोदर को यहां पर कहा दामोदर। दामोदर लीला तक उसके पहले भी हम लोगों से कृष्ण का संबंध था बचपन से, हम लोग लंगटिया याद, उस समय गोपियां भी कोई वस्त्र नहीं, कृष्ण भी कोई वस्त्र नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं, डोल रहे हैं प्रेम के साथ। तो बचपन से ही हमारा संबंध है, हम उसी कुल में आई हैं जिसमें ये कृष्ण आए हैं। वह है क्या, गोपेंद्र नंदन। गोपेंद्र कौन है? नंद बाबा। और ये कौन है? गोपेंद्र नंदी, श्रीमती राधिका जी। और भी जितने हैं सब गोपों की लड़कियां हैं ये सब, इसलिए बचपन से ही हमारा संबंध है। दामोदर लीला के बाद में ये बंसी का संबंध, तो कुछ दिनों में ही इसका ऐसा प्रभाव हो गया जो हम लोगों के इस धन को, किस धन को, जिसमें गोपियों का ही एकमात्र धन है कृष्ण के अधरामृत में, और बलपूर्वक हमारे सामने हमको दिखलाती हुई, हम लोग को अंगूठा दिखलाती हुई, दिखलाता हुआ या बेणू निर्लज और बेहाया होकर उसको लज्जा भी और डकैती एक तरह से कर रहा है, हमारे धन को हमारे सामने ही हमें दिखला करके अंगूठा और पान कर रहा है। देखो तो कैसा ये ठीक है। चलिए यहां यह एक लक्ष्य करने की बात है कि एक बांस का छोटा सा खंड नीरस निष्ठु, नीरस और कठोर, और गोपियां उसके साथ में ईर्ष्या कर रही हैं और बड़ी दीनहीन होकर के बोल रही हैं और असहाय हो रही हैं उसके सामने। देखो हमको दिखला करके अंगूठा हमारे सामने, कहते तू क्या कर लेगी हमारा, देखो तो मैं तुम्हारा ले रहा हूं। गोपियां उसके सामने असहाय बने, यही महाभाव का लक्षण, प्रेम का अत्यंत वह माने महाभाव उत्कर्ष है प्रेम का, जिसमें अयोग्य व्यक्ति में भी निष्प्राणी में भी उससे ईर्ष्या कलह और चित्त विक्षिप्त होकर के महा उन्माद हो जाता है इनको, गोपियों को उन्माद की अवस्था में न जाने क्या क्या बकती है, ये महाभाव का लक्षण है। इसलिए ये कह रही हैं पान शब्द नहीं दिया, भोंगते स्वयं, भोंगते माने क्या, भोग करता है, क्या भोग करता है, जैसे संसारी लोग भोग करते हैं, माने किस चीज का, जो कि दूसरे के लिए संबंध है, प्रिया प्रियतम के लिए ही संभव पर हो सकता है, उस अधरामृत का ये भोग करता है, रसास्वादन करता है। मतलब क्या, इनको ईर्ष्या हो रही है, यह है हमें, हमें हमारी चीज और हमें हमारे सामने ये दूसरा भोग कर रहा है। जदवर रिस अवशिष्ट रसम हृदय, जद अवशिष्ट रसम, इसका गोस्वामी जी बहुत इसका अर्थ कर रहे हैं, बहुत प्रकार के, वो तो सभी श्लोकों का बहुत तरह से अर्थ कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं गोपियां कहिए देखो सखीरी, भूंगते स्वयं जद अवशिष्ट रसंग, ये वेणु निष्ठुर होकर स्वयं नीरस होकर के भी कृष्ण का अधर रस कभी भी कम नहीं होता, जितना कोई उसके अधर रस का पान करे वो तो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण मद पूर्ण मिदम, इसलिए निरंतर पान करता है, कभी छोड़ नहीं सकता। एक अर्थ ये जद अवशिष्ट रसम, कभी न अवशिष्ट रसम, कृष्ण का धर ही ऐसा है जिसमें सब समय अमृत भरा रहेगा। यह निरस वेणु उस अधर को भी निरस बनाना चाहता है पान कर, किंतु पान नहीं कर नहीं पाता, इसलिए निरंतर पान कर रहता है, गोपियों को देखकर के बड़ा खेद हो रहा है और इसे ईर्ष्या हो रही है, देखो तो ये कैसा ढीठ है, निडर है, ऐसा कर रहा है। दूसरा अर्थ यह होगा जब अवशिष्ट रसम एक बूंद भी रस नहीं छोड़ता है। अवशिष्ट और माने होता है हीन, हीन माने नहीं, रस रस नहीं है ऐसा करना चाहता है, ऐसा पान करता है दूसरी कोई शक्की करी, अरे तो ये तो ऐसा पान करता है कि एक बूंद भी थोड़ा सा भी नहीं रखता। और इसी कारण कृष्ण का अधर जो लाल होता है, कैसा लाल, फल के समान बिंब फल, उनको भी पराजित करने वाला कृष्ण के ये दोनों अधर हैं। इतना सुंदर, इतना स्निग्ध, इतना रसपूर्ण, इतना सुगंधी, इतना सुस्वादु कृष्ण का अधर, किंतु ऐसा पान करता है कि एकदम सूख जाता है उनका और उनके होठ पीले पड़ जाते हैं, ऐसा ये निष्ठुर है। अथवा अथवा और क्या लिखा था,
अवशिष्ट राग,
जो से बोलो अब कुछ नहीं,
अवशिष्ट और रस अर्थात राग,
हाँ? वो तो बतलाया है यहां पर, जब अवशिष्ट रसन, तो एक पहले बतलाया था ना जो कि वो जितना भी कर, अच्छा आप बोल लीजिए, गोपियां महाभाव में सर्वदा स्थित रहती, तो सनातन गोस्वामी ने अवशिष्ट पद का अर्थ ये किया, और माने हीन और शिष्ट माने शेष, न शेष, शेष नहीं है, संपूर्ण रूप से इन्होंने पान कर दिया, एक भी नहीं रहने दिया। फिर वही अर्थ फिर करते हैं, अवशिष्ट अ माने न होता है, अ माने न वशिष्ट, अर्थात तनिक भी शेष नहीं। फिर और करते हैं निरंतर अवशिष्ट का, और माने रस माने राग, राग थकले राग रहने पर जैसा होता है, अर्थात ये कभी भी कृष्ण से रस उनका सुख नहीं सकता, ये निरंतर ये पान करता है ढीठ होकर के हमको दिखला करके, और सबसे अच्छा अर्थ तटस्थ होकर के करते हैं स्वयं सनातन गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी, वो क्या अवशिष्ट रसन गोपिका ही इसके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, वे इसका पान करती हैं, पान करके करने के बाद में ये जैसे प्रसाद होता है, फिर महाप्रसाद महाप्रसाद होता है, ऐसे ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये वेणु कितना सौभाग्यवान है, गोपियां उसको पान करती हैं तो ये प्रसाद हुआ, और गोपियों ने पार पार यदि पान किया तो ये हो गया महाप्रसाद, और उनके पान से अवशिष्ट जो रह गया उसको ये वेणु पान करके महाप्रसाद पान करके ये कितना धन्य है, जो हम इसके सौभाग्य का मैं हम वर्णन नहीं कर सकती हैं, ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। कौन लवंग मंजे, ये कौन है, ये सखी हैं, वो जो सखियां हैं जो कह रही हैं वो नायिका सखियां हैं, श्रीमती राधिका चंद्रावली, श्यामला भद्रा, ललिता विशाखा, वो सखियों का कथन पहले वाला है, और ये कौन कारण है? नित्य सखी और प्राण सखियां जिनकी आख्या मंजरी है, इसलिए वो देख रही हैं कि देखो हमारी प्रियाओं, हमारी जो प्रियतमा जो गोपियां हैं, हमारी सखियां हैं, उन्होंने ही पान किया और उसके बाद में प्रसाद के जो रूप में रह गया, अब ये पान करके कितना धन्य और सौभाग्य, इनको और अधिक ईर्ष्या होती है, उन लोगों को भी इतना ईर्ष्या असूया और दुख होता है, उससे अधिक जो हमें नहीं मिला और ये बंसी ने बेणु ने हमें थुत्कार कर यह लज्जापूर्वक निर्लज्ज होकर के ये पान कर रहा है, ये किनका भाव है? उनका, हमारे उज्ज्वल नील के, उज्ज्वल नीलमणि के इस प्रसंग में जहां गोपियों को दो भागों में किया गया, एक एक कामात्मिका, कामात्मिका गोपियां, कामात्मा गोपियां दो प्रकार की, एक पहला तद संभोग इच्छा में और एक है तद इच्छा भाव में, तद भाव इच्छा में, इनके लिए इन दोनों में कुछ अंतर है। वो कृष्ण के लिए मिलने के लिए उत्कंठित हैं और ये उत्कंठित हैं किस में? दोनों को मिलन करा करके उसका रसा साधन करने के लिए उत्कंठित हैं। इनमें विशेष एक बात यह है, उन लोगों के लिए जो अष्टसात्विक भाव इत्यादि जो विकार होते हैं, लिखवाया था वहां पर, इनका कुछ दोनों में विशेष अंतर यह है कि उनके, उनका कृष्ण के प्रति अनुराग है, श्रीमती राधिका इत्यादि का, और इनका क्या है? इनका अनुराग है दोनों के मिलन करा करके उन दोनों की सेवा करने के लिए इनका अनुराग है। तो ये कह रही हैं, इसीलिए कह रही हैं, ये खेद के साथ में, ये भी शेद खेद के साथ में कह रही हैं, और इन दोनों का जो महाप्रसाद रूपी जो अधरामृत था जो हम लोगों इसके उत्तराधिकारी, ये बेणु हमें धिक्कृत कर, हमें दूर कर, हमारे सामने ही में नित्य निरंतर उस महा महा महाप्रसाद को पार, कितना धन्य है। बोलिए। प्रश्नात्म गोस्वामी और व्याख्या करें, बहुत सुंदर, बहुत अधिक विशेष ध्यान देकर के सुन। भुंक्ते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदयन्यो हर्षक, जिस समय यह वेणु कृष्ण के अधरों पर विराजित रहकर उनका अधरामृत पान करता है तो समय वो कूज उठता है, कूज उठता है मैंने कहा, वो भी उन्मादित हो जाता है और उन्मादित होकर के ऐसा अस्फुट स्वर करता है, मधुर शब्द करता है जिसे सुनकर हृदयों सरोवर, जैसे नदियां हैं यमुना नदी, जैसे कुसुम सरोवर है मानसी गंगा जी, और सब सरोवर है जलाधार, ये सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, इसका मधुर रस में और भी बहुत गूढ़ रहस्य पूर्ण अर्थ किया जा सकता, किया इन्होंने, किंतु वो सब कहना ठीक उचित नहीं समझ सकता। इसलिए वो कहते हैं साधारण अर्थ ही प्रकाश करते हैं कि यह उन्मादित होकर उन्मत्त होकर ऐसा मधुर और अव्यक्त शब्द करता है जिसे सुनकर जमुना मानस गंगा कुसुम सरोवर आदि ये जलाधार आनंद से उत्फुल्ल हो जाते हैं, रोमांच जाते हैं। अजय कैसे अग्नि कमल के फूल कुबदनी के फूल विकसित होते हैं, मानो सरोवर और नदियां हंसती हैं। आज देखो हमारे रस से पुष्ट हुआ है, वृक्ष जितने हैं ये हमारे बेटे के समान हैं, हमारे ये वंशज हैं, उन वंशों में ये बांस और बांस में जन्म लिया हुआ यह वेणु इतना सौभाग्यवान हुआ हमारे कुल खानदान में, जो ऐसा सौभाग्यवान जो निरंतर कृष्ण का धरामृत पान करता है, जो गोपियों का धन है, विशेष करके ये गोपियों का जूठा महाप्रसाद उच्छिष्ट रस का पान करता है, ये कितना बड़ा ही ऊंचा ये सौभाग्यवान है। इसलिए आनंद के मारे उसके रोमांच, रोमांच माने कमल के फूल सब खिल उठते हैं, सुगंध निकलने लगती है चारों चारों तरफ में बीनी भी, और सारे वृंदावन को आमोदित कर देता है। हृदन्यो हृत्सव तचो अश्रु मुमुचु तर्वो जतार्या, जैसे किसी कुल में कोई एक लड़का ऐसा उत्पन्न हो जो सबसे बड़ी पदवी को प्राप्त हो सके। सबसे बड़ी पदवी क्या है संसार में? कृष्ण भक्त के समान और कोई पदवी नहीं, और कृष्ण भक्तों में भी ब्रज का कोई रसिक भक्त हो गया, उन रसिक भक्तों में भी एकांतिक रूप में कृष्ण के प्रति सखा हो गया या वात्सल्य भाव वाला हो गया, और उससे भी अधिक बढ़कर यदि गोपियों के भाव वाला हो गया, श्रीमती राधिका जी के दासी में उसका नाम लिखा, इसे बढ़कर और कुछ नहीं। साधारण रूप में लोग समझते हैं, जैसे पेपर में आज देखा था कोई नए प्रधानमंत्री बने हैं भारत, गुजराली गुजराला ना क्या, तो जब उन्होंने कौन वायसराय या क्या कहलाते हैं राष्ट्रपति ने उनको अपने भवन में बुला करके और कहा कि आपको मैं निमंत्रण करता हूं प्रधानमंत्री बनाने के, बड़े खुश हुए। अब खुश होकर के जब घर आए तो उनकी मां, उनकी स्त्री, उनके बेटा बेटियां, उनकी स्त्री के सहेलियां आकर के गले में माला डालने लगी, उनके मैया उनको आलिंगन, बड़ी आनंदित हुए कि आज राष्ट्रपति पर जिसे कोई कल्पना नहीं कर सकता था कल तक, साधारण व्यक्ति और प्रधानमंत्री बन गया। क्या एक है ये बिल्ली के लिए छीका टूट गया ना सौभाग्य से, कभी उसके सौभाग्य में नहीं था, कभी संभव वर्ग नहीं था, ये तो कांग्रेस और उनकी लड़ाई के वजह से ये सब, जैसे एक अपदार्थ व्यक्ति भी जैसे कुछ हो जाते हैं, वैसे ही सबसे अधिक बड़ा पद है राधा जी का दासी, से बढ़कर के और जगत में कोई पद नहीं। हम लोग कहते हैं कि रूपानु रूप गोस्वामी के चरणों का किंकर होना, किंकरी होना, ये सबसे अधिक पद। तो ये आज वृक्षों के, वृक्षों का ये वंशज है, नदियों के पानी से वो सिंचित होता है, कौन ये बांस, जितने प्रकार के हैं कदम्ब पीलू इत्यादि वृक्ष, मानो वो पानी पानी नहीं, क्या है वो उनका दूध है भैया का, और उसे पान करके पुष्ट होते हैं। इसलिए कितना हमारा सौभाग्य कि हमारा बेटा ऐसा पत पाया, ये तो नदियां सोच रही हैं, और फुल होकर के कमल के बहाने हंस रहे हैं, और वृक्ष सब पीलू के वृक्ष हैं, कदम्ब के वृक्ष हैं, आम के हैं, कटहल के हैं, ये सभी वृक्ष आज बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज हम वृक्षों के कुल में, आज ये बांस के कुल में हमारे भैया का कुल, बांस, कदम्ब, नीम, ये सब भाई हैं, परस्पर सखा हैं। आज ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारे कुल में ऐसा वेणु उत्पन्न हुआ जो कृष्ण के अधरों को सर्वाब्दी राज करके उनका या पान करता है, जो गोपियों का प्रसाद के सो। आज इनका कितना भारी सौभाग्य है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो भी पुलकित हो उठते हैं। कैसे पुलकित होते हैं, कैसे समझा? अरे देखने ही नहीं है सखी को कर, अरे सखी देखने ही रही, ऊपर से नीचे तक रोमांचित हो रहे, फूल एकदम विकसित हो रहे हैं और मंजरियां उस पर लहक रही हैं, साथ ही साथ आंखों से प्रेम की सुखपूर्ण अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, मधु की वर्षा हो रही है। मधु की वर्षा माने क्या? यदि कोई देखा, जैसे वो उपमा दिया ना, कोई बेटा विदेश से आया, मैया ने देखा और बाप ने देखा कि हमारा बेटा बहुत दिनों के बाद में आया है, बस उनके आंखों से आंसू निकल गए। मानो ये मधु की धारा, ये उनका सुख से आनंद आश्रु उनके हैं, तो ये पुलकित हो जाते हैं, आंखों से आंसू झरने लगते हैं और कहते हैं कि साधु साधु, आज हमारा यह कुल पवित्र हो गया और धन्य हो गया, तुम ऐसी पदवी को प्राप्त कर लिया जो कृष्ण के अधरामृत को पान करने का अधिकारी हो गया। इसलिए कोई प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। चलिए, गोपियों ने देखा वेणु का सौभाग्य, गोपियां अपने भाव नेत्रों से देख रही है कि ये नदियां और ये वृक्ष वेणु के भाग्य पर ही ठला रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, आज हमारे वंश में हमारा यह लड़का ऐसा सौभाग्य प्राप्त, इसलिए बड़े खुश हैं। गोपियां कह रही हैं या वेणु, इनके माता पिता, माता माने ये सरोवर, जलाधार, नदियां और ये वृक्ष हमारे सब शत्रु, हमारे दुख के कारण यही हमारे हृदय में ताप दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य छीन रहे हैं इन्हीं के वंश में, इसलिए ये तो बड़े आनंदित हो रहे हैं और उनका आनंदित देकर के इनके हृदय में बड़ा ताप, बड़ा खेद उठ रहा है। इनके गोपियों के हृदय वो कह रही है कि देखो, साधारण ये नीरस और कठोर बांस का एक छोटा सा टुकड़ा, इसका इतना सौभाग्य और इसके सौभाग्य को देख करके यही तरा रहे हैं कि इसके माता पिता और भाई को, जगत में सचमुच में इन्हीं का जन्म शामिल है। इसलिए हम ऐसे दुर्भागा हैं, ये दिन रात उनके होठों पर कभी बंतक्षल पर पड़ा रहता है, कभी अपनी पगड़ी में रखते हैं, कभी फेटे में रखते हैं, और हमारा दुर्भाग्य हम चाहने पर भी उस वंश में जन्म कर उनके साथ में बचपन से के लिए हमारा सौभाग्य नहीं है, बड़ी दुखी है। एक सखी उसमें से कहती है, हमारे दुर्भाग्य का कारण कौन है? ये वेणु, इनका बेटा सरोवरों और वृक्षों, इसलिए क्यों ना हमें इसे सभी मिल करके चलो और चल करके इसको उस कृष्ण के हाथों से छीन लें, अथवा कौशल पूर्वक बहाना बना करके इसको हम लोग चोरी कर लें और ऐसे गुप्त स्थान में रख देंगे जो कभी भी जीवन में इसको ऐसा सौभाग्य नहीं होगा जो कि कृष्ण के अधरों पर हमारे सामने बैठ करके और हमें चिढ़ाए, इसे चलो ये चोरी कर लें। ऐसा सोच करके गोपियां ये कर रही, चलो अभी सभी हम अकेले काम नहीं है, ये कृष्ण को चित्त को इधर उधर करना है, कृष्ण अनमने हो जाएंगे किसी काम में, हम लोग उनको लगा देंगे और बदल से उनके हाथ से ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? कृष्ण चौपट खिलाने लगे और वो खिलाने कृष्ण ने मनोनिवेश उसमें कर लिया, राधा जी उनको हरा रही हैं, कृष्ण हार रहे हैं और उस समय में देखा जिनका मन कहीं दूसरी जगह, गोपियां ने, ललिता जी ने, और किसी ने उधर से हटा दिया दूसरी गोपी, उसने तीसरी को, चौथी को, और यहां तक कि उसे बहुत दूर कहां लेकर के रख दिया, और वो पानी मधुमंगल का है, तुम्हारी बंसी किधर गई? उसके बंसी का, अरे तुम अपनी लज्जा हारा, तुम्हारा अपना सब कुछ हार गया, अपनी माला हार गया, सब कुछ, और बंसी को भी हार गया। अब तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, कहीं हमको भी तुम दाव पर दे देगा और तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमने देखा जो बंसी कहां, देखा जो सचिन की बंसी नहीं। तो ऐसे गोपियां उस समय सोच करके कृष्ण को बंसी का अपहरण करने के लिए कहती है, चलो ऐसी बंसी को दंड देना ही हमारे, ऐसा करके इस श्लोक से ये ध्वनित होता है, इस वक्त जो अस्तु मुमुष्यो सर्वो बिंदु ने छीटा दे रहे हैं। इसको श्रवण करके यदि हमें ब्रज के भाव के प्रति थोड़ा सा भी लोभ उत्पन्न हुआ, हमारा जीवन भी ऐसा हो, हमारी भक्ति भी ऐसे ही हो, हम इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की भक्ति नहीं चाहते हैं, उसका जीवन सार्थक। भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी सदाचारी व्यक्ति नहीं है या असदाचारी व्यक्ति नहीं है, जो कोई जिस स्थिति में रहे, स्थाने स्थिता सन्मान, जिस किसी भी स्थिति में रहे, महान दुर्जन हो, व्यभिचारी हो, लंपट हो, कोई जीवा नहीं, वह पा सकता है। और महासदाचारी सन्यासी सब कुछ त्याग करने वाला भी नहीं पा सकता। एक गुण है जो महादुराचारी व्यक्ति भी उसको पा सकता है, वो गुण क्या है? श्रद्धामान जन है, श्रद्धामान। भक्ति का अधिकारी केवल श्रद्धा वाला, जिसको इसके प्रति श्रद्धा है, बिल्ल मंगल जैसे व्यक्ति को भी इसके प्रति श्रद्धा है, तो वहीं से ही इस भक्ति का अनुशीलन कर सकता है। और महासदाचारी होकर के भी, महाजोगी होकर के भी, सनक सनंदन सनातन जैसे व्यक्ति हैं, यदि उनके प्रति लोग नहीं तो इसके अधिकारी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हम समस्त अनर्थों को छोड़ करके ही परम शुद्ध होकर के इस भक्ति का आचरण करेंगे, कोई जरूरी नहीं। जो जहां है उसी स्थिति में रह करके उसके यदि सुनने में श्रद्धा हुई और लोग हुआ तो इस भक्ति का अधिकारी है, अन्यथा कोई भी इसका अधिकारी नहीं। मन वायु से भी अधिक चंचल होता है, वायु को कंट्रोल कर किया जा सकता है, कोई कर सकता है, करना सहज नहीं। यदि करने पर भी मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बाको वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा उद्वेगम, इनका वेग का सहन करना बड़ा भारी कठिन है। कौन कर सकता है? जिसको भक्ति है वही कर सकता है, जिसको भक्ति नहीं है वह नहीं कर सकता। इसलिए सब प्रथम हम अनर्थों को दूर करेंगे और तब भर भक्ति आएगी। ये मूर्ख लोग आते हैं भक्ति तत्व को नहीं जानने वाले, वो तो दोनों अन्वय व्यतिरेकाभ्यास, क्या भक्ति का अनुशीलन करेंगे साथ साथ में अनर्थ भी दूर करने का प्रयास करेंगे, कैसे? भक्ति के द्वारा। बिना भक्ति के द्वारा चित्त को कंट्रोल करना बड़ा भारी संभव है, इसलिए भक्ति जितने परिमाण में आती जाएगी चित्त निर्मल होती जाएगी। किंतु लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है, श्रद्धा किसी भी अवस्था में, दुराचारी व्यक्ति को भी भक्ति के प्रति लोभ हो सकता है, कोई भी उसमें हानि नहीं होगी। किंतु उसका आचरण करने के लिए शुद्ध अनर्थों से रही ये होना उचित है, किंतु इसी के द्वारा ही होना। इसलिए भक्ति के द्वारा अनर्थों को दूर करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। जो लोग भक्ति तो करते हैं, अनर्थों को दूर करने की चेष्टा नहीं करते, उनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ती।